सूरत बनी इसराइल शुरू से शुरू होगा ये पारा, 70वें नंबर की सूरत है और टोटल 111 111 आयते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पहली 10 आयत है, रुकू नंबर 1, टॉपिक है अल्लाह का वादा पूरा होकर रहने वाला है, बस ये कि हम उस पर यकीन तो करें। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बास नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला खूब सुनने देखने वाला है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बना दिया कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। ऐ इन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ सवार कर दिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। हमने बनी इसराइल के लिए इनकी किताब में साफ फैसला कर दिया था कि तुम ज़मीन में दो बार फसाद बरपा करोगे और तुम बड़ी ज़बरदस्त ज्यादतियाँ करोगे। इन दोनों वादों में पहले के आते ही हमने तुम्हारे मुकाबले में अपने बंदे भेज दिए जो बड़े ही लड़ाके थे, बस वो तुम्हारे घरों के अंदर तक फैल गए और अल्लाह का ये वादा पूरा होना ही था। फिर हमने इन पर तुम्हारा गलबा देकर तुम्हारे दिन फेरे और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला बना दिया, यानी नंबर में ज़्यादा कर दिया। अगर तुमने अच्छे काम किए तो खुद अपने ही फ़ायदे के लिए, और अगर तुमने बुराइयाँ की तो भी अपने ही लिए। सोचिए, कोई किसी के सर पर एहसान नहीं करता नेकी करके। अगर अबू अय्यूब अंसारी ने नेकियाँ की तो किसके ऊपर एहसान था? उनके अपने ऊपर एहसान था। इसलिए फरमाया, फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे बंदों को भेज दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और पहली दफ़ा की तरह फिर इसी मस्जिद में घुस जाएं और जिस जिस चीज़ पर काबू पाएं तोड़ फोड़ कर जड़ से उखाड़ दें। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। हाँ, अगर तुम फिर भी वही करने लगे तो हम भी दोबारा ऐसा ही करेंगे। और हमने मुनकरों का कैद खाना जहन्नुम को बना रखा है। यकीनन ये कुरान, अब गिनना शुरू कर दें, मैं आपको नंबर शुरू से लिखा चुकी हूँ। कुरान के अल्फाज, यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है और ईमान वालों को जो नेक अमाल करते हैं इस बात की खुशखबरी देता है कि इनके लिए बहुत बड़ा अजर है, और ये कि जो लोग आखरत पर यकीन नहीं रखते इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो ये था पहला रुकू। पहली आयत के बारे में एक रिवायत है सिलसिलातु सहीहा में, 4026, अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं। आपने फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज का सफ़र कराया गया और सुबह के वक्त मैं मक्का में था, मैं घबराया हुआ था क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग मुझे छुटला देंगे। बस मैं परेशान होकर अलहदा बैठ गया, यानी अल्लाह के नबी परेशान होकर अलहदा बैठ गए। इतने में वहाँ से अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का गुजर हुआ और वो आया और आपके पास बैठ कर मजाक करते हुए कहने लगा, क्या कुछ हुआ है? टॉन्ट कर रहा है, टोन देखिए। आपने फरमाया, हाँ। इसने कहा, क्या हुआ है? आपने फरमाया, आज रात मुझे सैर करवाई गई है। अबू जहल बोला, कहाँ की? आपने इरशाद फरमाया, बैतुल मक़दस की। अबू जहल ने कहा, अच्छा, फिर आप सुबह के वक्त हमारे पास भी वापस पहुँच गए? आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल ने इस वजह से आपकी इस वक्त तकजीब नहीं की कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो लोगों को जमा करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का इनकार कर दें। इसलिए अबू जहल ने कहा, अगर मैं आपकी कौम को बुलाऊं तो क्या ये बात उनको बयान करोगे? यानी शर्मिंदा कराता चाह रहा है सबके बीच में आपको। आपने फरमाया कि हाँ। अबू जहल ने आवाज़ दी, ओ बनू काब बिन लुई, आ जाओ। ये बात सुनते ही लोग पहुँच गए और इनके पास आकर बैठ गए। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो बात मुझे बयान की इनको सुनाओ। देखिए, अल्लाह अपना पैगाम खुद ही सुनवाने के लिए रास्ते बना रहा है, जैसे मूसा का पैगाम फिरौन से कहलवा लिया। खैर, आपने फरमाया, मुझे आज रात सैर कराई गई है। लोगों ने पूछा, कहाँ का सफ़र है? आपने फरमाया, बैतुल मक़दस का। लोगों ने कहा, फिर आप सुबह के वक्त यहाँ मक्का में वापस भी आ गए? यानी वही हैरत जो अबू जहल को थी वो लोगों को भी हुई। आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर कोई तालियां बजाने लगा और किसी ने इस झूठ पर ताज्जुब करते हुए सर पर हाथ रख लिया, ऐसे जैसे आप नहीं करते यूं, क्यों खो, ये क्या बातें हो गई। चूंकि बास लोगों ने इस शहर का सफर किया हुआ था और मस्जिद अक्सा देखी हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा क्या आप हमारे लिए मस्जिद अक्सा के औसाफ बयान कर सकते हैं, यानी वो कैसी लगती है, हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा, आपने फरमाया मैंने औसाफ बयान करना शुरू किए, मैं वजाहत करता गया लेकिन बाज़ सलामतें मुझ पर खलत मलत हो गई, यानी अब एक दफ़ा जाकर देख कर कोई गुजर जाए तो सब तो याद नहीं रहता। इसलिए मस्जिद अक्सा को लाया गया और अकाल या अकील के घर के सामने रख दिया। मैंने उसे देखकर उसके औसाफ बयान करने शुरू कर दिए, फिर भी कुछ निशानियां मुझे याद नहीं रही थी। लोगों ने कहा जहां तक अलामतों का मसला है वो तो अल्लाह की कसम उन्होंने दुरुस्त बयान कर दी हैं। अब क्या हुआ, अबू जाहल अपनी सी कर गया। यहाँ है वो अल्लाह के नबी की हदीस जो हम अक्सर अलग कोट करते हैं ना, कि अल्लाह कभी कभी फासिकों से भी अपने दीन के काम लेता है, और सारे दीनदार रो रहे होते हैं, हाय हम फिर फासिक हैं फिर भी अल्लाह काम ले रहा है। देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीसें बयान करना, सुनना सुनाना छोड़ दें। इस उम्मत का आज बहुत बड़ा बिगाड़, बल्कि जब मैं कहती हूँ कि जो हालत बिगड़ गई है वो हमारे जैसों ने आधी आधी हदीसें सुनाई हैं। यदि अब आप सोचें ना कि एक बंदा सारा महीना दौरे तफसीर करवाता है आपको तरावी के बाद, 200-300 लोग उसकी तरावी में आते हैं, फिर दौरे तफसीर में भी 100-150 बैठे हैं, वो अपनी बेचारा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आपको दीन सिखाए, और आप जाके बाद में कह दें अल्लाह तो दीन के काम फासकों से भी करा लेता, अगर इन मौलवी साहब से सुन करा लिए तो क्या हो गया। सर नहीं, दीवार को मारने को दिल करता। ये है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीस, ये है वो वक्त, ऐसे वक्तों की बात अल्लाह के नबी ने की थी, हमने वाकया पीछे कर दिया उसको लग करके, और वो टोटा एक पेश करके बाहर कर दिया, सारे दीनदारों को शर्मिंदा कर दो, जी आप फांसी किए हैं तभी तो अल्लाह आपसे दीन के काम ले रहा है, और हम नहीं करते, नऊज़ुबिल्लाह। अब आप ज़रा सिनेरियो समझें, सब ने रिजेक्ट कर दिया, अबू जाल जैसी हैरत सारों को हो गई। इतने में क्या हुआ, उधर से अबू बकर सिद्दीक आए। अबू जाल को पता था कि अल्लाह के नबी का दिल सिद्दीक में है, वो कहते हैं ना जो शम्मा को परवाने से नस्बत वो सिद्दीक को मोहम्मद से नस्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे इधर आओ, अगर कोई शख्स ऐसे 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 ये कर ले तो मानोगे। अच्छा, मज़े की बात देखिए कि अभी अबू बकर सिद्दीक की मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई थी, और आप तक ये खबर भी नहीं गई, क्योंकि ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक था ना मेटा था ना फुलां था ना फुलां था। उस वक़्त का मीडिया लोग थे, एक से दूसरे के घर में जा जा कर खबरें देते थे। कहा अच्छा, कोई ये कह के सुबह इधर गया फिर शाम इधर गया फिर रात तक वापस आ गया तो मुमकिन है? कहा लगता तो नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। अच्छा, तो देखो वो तुम्हारा दोस्त ये कह रहा है। कहा अच्छा, दोस्त कह रहा है, फिर हो सकता है। उस पे अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला, तो अबू बकर सिद्दीक ने मेराजुन्नबी की तस्दीक की और दोस्ती का हक अदा कर दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है 1622, अगर मैं किसी को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाता तो अबू बकर को दोस्त बनाता। क्या शान है अबू बकर की, ऐसी मिल गई नहीं, ये गारे सौर में सांप डिसवाया था अपने अंगूठे पे, पैदल चढ़े थे गारे सौर पे, आमिर बिन फुखैरा के जरिए दूध आता था, सोने की डलियां थी साथ लेकर आए थे। ये कदम कदम का सफर है, हम नहीं सुन सकते। वो कहते ना कि हम ही थक गए सुनाते सुनाते, लोग तो सुन रहे थे बड़ी मोहब्बत से, हम ही थक गए दास्तां सुनाते सुनाते। साहबा कराम ने रकम की ये तारीख कुर्बानी और हिजरतों पे, और साहबा की कुर्बानियां उनकी हिजरतें तारीख के माथे का झूमर है, और ये अबू बकर उसमें नंबर वन थे। और रिवायत से ये भी पता चलता है कि मेराज के मौके पे अबू बकर सिद्दीक की शक्ल में एक फरिश्ता वहाँ मौजूद था, ताकि अल्लाह के नबी को उनकी माइयत का एहसास हो। वल्लाहु आलम। आज भी आप कहते हैं ना चलो मेरी तस्वीर साथ रख लेना, तो साथ साथ ही वीडियो पे भी घूम रहे होते हैं ना हम साथ, लेकिन कहीं गए और अपना साथ ना हो तो उसकी तस्वीर साथ हो, अल्लाह ने उनका क्या किया, अल्लाह नोस दी बेस्ट। और अबू जहल की बात का जवाब, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर ये बात सच है। ये थी मेराज की तस्दीक, और ये कर गई अबू कहाफा को, अबू बकर सिद्दीक में बदल गई, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। आप मैं क्या करें, नोट कर लीजिए, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए नंबर एक शुक्रगुजारी। बोलिए दिल से अल्हम्दुलिल्लाह, बोले ईमान लाना है, फसाद नहीं करना, सरकशी नहीं करनी, अल्लाह के सिवा किसी को कारसास नहीं बनाना, और अल्लाह के रहम की उम्मीद रखनी है इंशाल्लाह। आगे है थी रुकू नंबर 2, 11 से 22, 11 से 22। आप नंबरों पे भी गौर किया करें, बड़े आर्टिस्टिक नंबर होते हैं, कई सूरतों में बहुत कुछ मुझे दिख रहा होता है, लेकिन इसलिए कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे मैं बात नहीं करती, लेकिन इधर भी कुछ ऐसी ही कहानी है। टॉपिक है इंसान बहुत जल्दबाज है, वजदुल इंसान बिशर, और इंसान बुराई की दुआएं मांगने लगता है बिल्कुल इसकी अपनी भलाई की दुआ की तरह। इंसान है ही बड़ा जल्दबाज। हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानियां बना दिया है। रात की निशानी को तो हमने बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन बना दिया, ताकि तुम लोग अपने रब का फजल तलाश कर सको, और इसलिए भी कि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको। और हर हर चीज़ को हमने खूब तफसील से बयान फरमा दिया। हमने हर इंसान की बुराई भलाई को इसके गले लगा दिया, और बरोज़ क़यामत हम इसके सामने इसका नामे अमाल निकालेंगे, जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पालेगा। ले खुद की अपनी किताब आप पढ़ ले, इकरा किताब कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। आज तो खुद ही अपना हिसाब लेने को काफ़ी है। जो राह रास हासिल कर ले वो खुद ही अपने भले के लिए राह याफ्ता होता है, और जो भटक जाए इसका बोझ इसी पर है। कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर ना ला देगा। और हमारी ये सुन्नत ही नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब करने लगे। और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं, तो वहाँ के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वो इस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो इन पर अजाब की बात साबित हो जाती है। फिर हम इसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। हमने नूह के बाद भी बहुत सी कौमें हलाक की, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार और खूब देखने भालने वाला है, जिसका इरादा सिर्फ इस जल्दी वाली दुनिया, ज़रा सा गौर कीजिएगा साइड पे, जिसका इरादा इस जल्दी वाली दुनिया यानी फौरी फ़ायदे का ही हो, इसे हम यहाँ जिस कदर जिस के लिए चाहें सरे दस्त देते हैं, यानी जिसको हम चाहते हैं और जितना चाहते हैं, यानी कि वो जितना चाहता है और हर एक, ये अंदाज नोट कीजिएगा, फौरन दे देते हैं, यानी दुनिया नकद में दे देते हैं। बिलाखिर इसके लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं, जहाँ वो बुरे हालों में धुतकारा हुआ दाखिल होगा, और जिसका इरादा आखरत का हो और जैसी कोशिश उसके लिए होनी चाहिए वो करता भी हो और वो बेईमान भी हो। बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह के यहाँ पूरी कदरदानी की जाएगी। हर एक को हम वहम पहुँचाए जाते हैं, इन्हें भी और उन्हें भी। तेरे परवरदिगार के इनामात में तेरे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं है। देख ले कि इनमें से एक को एक पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है, और आखरत तो दर्जों में और भी बढ़कर और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न ठहरा कि आखिर में तू बुरे हालों बेकस होकर बैठ रहेगा। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत आयतें हैं। कभी आप इसकी इन डेप्थ तफसीर यानी रेगुलर तफसीर भी सुन लेना, जो आम तौर पे हमारी कोर्सेज में होती है, तो एक एक आयत पे तकरीबन 2-2 घंटे का लेसन है। हमारे लिए अब इस वक्त की नौयत के एतबार से आयत 15 में सहाबा कराम को किस चीज़ की खुशखबरी मिल रही है कि जिसने राह रास्त इख्तियार की, हक की इतबा की, नबी की बात मानी, इन पर क़्यामत के रोज़ कोई बोझ ना होगा। अल्लाह हमें इन्हीं लोगों में शामिल करें। फिर आयत 19 को देखिए, सहाबा कराम की कदर व मंजिलत क्या थी कि सहाबा कराम की तलब आखरत की थी, बहुत बात कर चुके, उनकी तलब खालिस अल्लाह की रज़ा थी, उनका हर अमल सुन्नत नबवी के मुताबिक था, इसीलिए फिर अल्लाह ने उनसे एंडलेस काम लिया। अल्लाह हमसे भी ले ले। अपने लिए अमल के नुक्ते ले लीजिए, भलाई के लिए दुआएं करनी है, हिदायत का रास्ता इख्तियार करना है, शर के लिए दुआ नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, नाफरमानी नहीं करनी, और जल्द मिलने वाली दुनिया का इरादा नहीं करना। अल्लाह के फैसलों के साथ साथ चलते जाना है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो काम अल्लाह ने सहाबा कराम से लिया वो आपसे भी लेगा। सहाबा के दौर में नबी थे बीच में, जिनको ज़रूरत थी मददगारों की, कभी आपका दिफा, कभी अबू अयूब की तरह आपकी मेहमानी। ज़ाहिर इंसान होने के नाते ज़रूरियात, खाना पीना सोना जागना, आज के दौर में आप चाहते हैं कि आप ये करें तो कुरान की खिदमत कीजिए। ये कुरान आज उम्मत मुस्लिमा के हाथों में बिल्कुल वैसे ही है जैसे सहाबा कराम के हाथों में नबी थे। ये जुमला लिख लें, अल्लाह के नबी का जो दिफा किया सहाबा ने, जो उनकी मेहमान नवाजियाँ की, जो आपकी मदद की, आज मैं और आप वो कुरान की करें। बस अपने आप को कुरान की खिदमत में खपा दें, कुरान वालों को छोड़ दीजिए, अल्लाह उनके लिए बहुत कुछ रख के बैठा हुआ है। आप इस कुरान के लिए अपने आप को पेश कर दें, आपका जीना मरना सोना जागना, आपका माल दौलत, आपके बच्चे, आपकी स्किल्स अगर इस कुरान को फैलाने में लग गई, इंशाल्लाह आप भी बच जाएंगे और आपके साथ वाले भी बच जाएंगे। और आपने नोट कर ही लिया होगा कि कितनी दफ़ा यहाँ किताबों की बातें, कुरान की बातें करके आज उम्मत मुस्लिमा को इस पूरी टॉप पे, आप देखिए कि आज हम कुरान के टॉप पे हैं ना, बल्कि इसी में वायत भी आएगी, वल यतलत्तफ, कुरान लफ्ज़ों के दरबार से ज़्यादा। आप मेरे हाथ से देखिए यूं करके ना, अब ये टॉप है। आज आपको पता चल रहा है कि फिर इस कुरान की तरतीब तौकीफी क्यों है। ये पैगाम आने ही इधर से, उम्मत का अरूज और कुरान का अरूज, बिल्कुल खाफ पे हम अल्लाह की रहमत से पहुंच गए। अल्लाह हमें अगले पे भी कामयाबी और इस्तकामत के साथ लेके चले। तो उम्मत के अरूज के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे जिनको इस वक्त हम पढ़ें, और ख़ास तौर पर इन्ना हासिल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, ये सीधा रखने वाला कुरान है, ये स्केल्टन है, इसके अंदर फिट होते जाइए, अल्लाह चाहेगा एक एक चीज़ आपकी ज़िंदगी की होगी। और ये जो नामा अमाल, तकदीर के फैसले, चिड़ियों में नहीं है, चूज़ों में नहीं है, सितारों में नहीं है, तुम्हारे अपने अमाल में है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, ये तुम्हारे अपने हाथों का किया हुआ है। अपनी ज़िंदगी को खुद इसके अंदर लेकर देखो कि तुम अपने बारे में क्या करके बैठे हो। आज मैं और आप अपने नामे माल को नहीं देखते, हमारे गले में लॉकेट होते हैं, हार होते हैं, गुलूबंद होते हैं। एक गुलूबंद ऐसा भी है कि जो क़यामत के दिन दिखेगा, आज हिडन है, छुपा हुआ है, वहाँ जाहिर होगा। उसका रंग कैसा है, उसमें किस रंग के स्टोन्स हैं, वो रियल पावर हैं कि दूसरे, वो मर्ल्स हैं कि वो, आप कह लें कि रूबी है, कि वो जुमुर्द है, कि वो गोल्ड है, कि सोना है, कि चांदी, उसकी फ़िक्र कीजिए। दुनिया में जो मिलता है ले लीजिए, क्योंकि मन कान यूरीद उलाजिला से ये बात अल्लाह ने बता दी कि दुनिया नकद है ना, आखिरत तुम्हें उधार लगती है। लेकिन इस नकद को छोड़कर उस आखिरत को पाने वाले को ये राह में पड़ी भी मिल जाती है। आप इस रूम से बाहर जाना चाहते हैं, सोचिए ज़रा, यहाँ बड़ी फिट होती है मिसाल, आप कहते मुझे निकलना, मुझे निकलना, बाहर निकलना। अब यहाँ से निकलेंगे ना, वो बाहर लॉबी जहाँ पीछे सोफे रखे वहाँ बैठेंगे, वो जगह इससे छोटी है। अब सारे आप अगर उधर चले गए तो कंजक्शन आपको फिर समझ आएगी, ओहो मैं तो इधर बेहतर थी। यानी हमें अपने मौजूदा हालत पे नहीं मज़ा आ रहा होता, हम कहते नहीं वो चीज़ ठीक है। इसके बरक्स अगर आप में से कोई कहता है कि मैं यहाँ बड़े आराम से बैठी हूँ, पुरसकून बैठूंगी, बस जो ही पारा पूरा होगा, क्लास ख़त्म होगी, तो बस मुझे गेट तक जाना है। जब आपने गेट तक जाना है तो रास्ते में क्या आएगा? माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पहले इस हॉल से बाहर वो लॉबी आएगी, वहाँ से निकलेंगे तो अगला हॉल शुरू हो जाएगा जहाँ आपकी रिसेप्शन है, आगे जाएंगे तो प्रेइंग एरिया आएगा, फिर सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो ऊपर के हॉल से गुजर के बाहर गेट के रास्ते में क्या क्या आ गया? आपने मांगा ये सब कुछ? दिस विल बी हैपनिंग विद यू। जो दुनिया मांगता है वो इधर से निकल के वहाँ आगे पढ़ेंगे, मईशत अंदन का अगले पारे में आने वाला है। ज़िंदगी तंग हो जाएगी सिर्फ दुनिया मांगने वालों को, कितनी लेंगे, कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितना ओढ़ेंगे। और तरस आते हैं उन लोगों पे जिनकी दुनिया इतनी ज़्यादा और उन पे इतनी लाइबिलिटीज़ हैं। और जो कहता है अल्लाह आखरत दे दे, तो लिखिए आखरत के तलबगार को दुनिया ये रास्ते के पैसेजेस और कॉरिडोर्स और रोड्स के रास्तों से मुशाबे करके मिल जाती है, फ्री में मिलती है दुनिया। और फिर इतनी मिलती है, इतनी मिलती है कि बंदा कहता है अल्लाह बस कर, सारा दुनिया में दे देगा। हज़रत उमर के वो जुमले याद करें कि अज़हब तुम, सारी नेकियां चली गई दुनिया में ही खा पी के आ गए हो, अल्लाह सब कुछ इधर नहीं, कुछ वहाँ के लिए भी रखना। तो ये चीज़ें जब समझ आती हैं, उसके बाद फिर हिजरत क्या और कुर्बानी क्या और जीना क्या और मरना क्या, और दुनियादार को तो उतना ही मिलता है जितना उसके नसीब में। ये अपने बच्चों को बताएं, मत अपने बच्चों को हरीस बनाएं दुनिया का, बेटा ये पढ़ जाओ, ये कामयाबी, ये डिग्री, इसके बाद ये, इसके बाद ये लाखों, ये करोड़ों, ये क्या फिगर्स हैं? उनके नसीब में ही होगा तो मिलेगा। करोड़पति बापों की औलादों को आपने सड़कों पे खड़े होते देखा होगा और अपोजिट भी देखा होगा। तो असल बात वही है कि एक इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह पे नज़रें लगाता है, अल्लाह ताला उसके कामों को आसान करता है। अब आगे से ख़ास तौर पे वो कमांडमेंट शुरू हो रहे हैं जिस पे मुस्लिम मुआशरे की बुनियाद अगर पड़ गई तो वर्ल्ड लीडर बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा। इस बारे में शुरू में दे चुकी हूँ, उम्मत के अरूज के लिए नागुज़ीर नुकात यहाँ से शुरू करें, यहाँ कमोबेश सारी बातें आ रही हैं। तो रुकू नंबर 3 में आयत 23 से 30, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خوبصورت بیلنس، وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا بھی پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی تو توقع رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یعنی ڈونٹ بی سٹنجی، کنجوس نہ بنو، اور نہ ہی اسے بالکل ہی کھول دے، زیادہ فضول خرچی نہ کرنے والے بنو، یعنی مال کو ضائع نہ کرو کہ پھر تم ملامت کیے ہوئے در ماندہ بیٹھ جانے والوں میں شامل ہو جاؤ، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا خوبصورت آیتیں ہیں، پہلے اللہ کا حق پھر بندوں کا حق۔ اس پہ ایک روایت نوٹ کیجئے گا، ادب المفرد کی روایت 3 ہے، معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ حسن سلوک اور بھلائی کس کے ساتھ کروں، آپ نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، میں نے پھر عرض کیا پھر کس سے، پھر کس سے، تیسری بار کے بعد آپ نے فرمایا اپنے والد سے۔ بڑی معروف روایت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے باپ سے زیادہ تکلیفیں سہی ہیں، دیٹس وائی، ادروائز اس کا یہ نہیں مطلب کہ باپ کی حیثیت کم ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، یہ بھی ادب المفرد کی روایت نمبر 12 ہے، ابو حریرہ اس کے راوی ہیں، کہیں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی والدہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے اماں جان آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، تو ان کی والدہ جواب میں فرماتی، اب یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں سے آپ کو مجھے بھی حصہ مل سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، کیا کہتی، اور تجھ پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ابو حریرہ فرماتے اللہ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، تو جواباً فرماتی اللہ تجھ پر بھی رحم فرمائے جس طرح تو نے بڑے ہو کر میرے ساتھ حسن سلوک کیا، اور جب واپس تشریف لاتے تو پھر اسی طرح کرتے۔ یہاں تک تو اتنی بات ہے نا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری، جس میں حضرت ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرائی تھی کہ اللہ مجھ پہ، میری ماں پہ، اور جو ہم دونوں سے محبت کریں ان پہ بھی رحم ہو۔ تو آپ بھی ابو حریرہ سے محبت کریں، انشاءاللہ آپ جلدی آپ ان کے قصے سنیں گے تو آپ کو یقیناً ان سے محبت ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ تو بہرحال صحابہ کرام کو تاکید کیا ہے آیت نمبر 26 سے 29 میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، اور بخیل نہ بنو نہ مصرف بنو بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ آپ نے اپنی سالی یعنی حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر سے ایک موقع پہ فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہ، جمع کر کے نہ رکھ ورنہ اللہ بھی روک لے گا، بند باندھ کر روک نہ لیا کر ورنہ اللہ بھی پھر رزق کا دروازہ یا رزق کا منہ بند کر دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1433، یعنی کھلے ہاتھوں سے دینے والوں کو اللہ کھلے ہاتھوں سے دیتا ہے، اور جو مٹھیاں بیچ بیچ کے گن گن کے زکوٰۃ کی ڈوریاں کاٹ کے ناگ نکال کر، موتی نکال کر، نئے پرانے سونے کا وزن نکال کر دیتے ہیں، ان کو اللہ پھر ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا دیتا ہے۔ کھلے دل سے دے دیں اللہ کو۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ پھر جو دے گا وہ آپ سے نہیں سنبھلے گا۔ میں اکثر لوگوں کو جمع تفریقیں کرتا دیکھتی ہوں، یہ میرا زکوٰۃ کا حساب دلوا دو نا، لگوا دو، کتنا ہے، کتنی ڈوری، اچھا نہیں تب تو اتنے کا تھا، تب تو اتنے کا تھا۔ کیا آپ کا کیلکولیٹر ہے؟ کیوں بڑے دل سے نہیں دیتے؟ جان جاتی۔ آپ دیکھیے بینکوں میں لوگ لاکھوں جمع کرا دیتے، باہر کے ملکوں میں پے چیک جاتا ہی بینک میں ہے، ٹیکس کاٹ کے آپ کو ملنا ہے، کیونکہ ہم جیسے انہیں ٹیکس بھی نہیں دینا، اگر انہوں نے کہا خود دے دو، کتنا اعتبار ہے؟ کیونکہ پتہ ہے نا کہ جب جائیں گے چیک کیش کرا کے لے آئیں گے، अल्लाह पे इतना तो भरोसा हो जितना बैंकों पे, और अल्लाह तो इससे बहुत ज़्यादा भरोसे के काबिल है। तो अल्लाह ताला हमारे दिल खोल दे, हमारे हाथ खोल दे, और अल्लाह जो देते हैं उनको बेहिसाब अता कर दे। क्या सीखा? अल्लाह की रज़ा पाने के आमाल, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, वालदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, सालेहियत इख्तियार करनी है, रिश्तेदारों को इनका हक देना है, मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक देना है, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी है इंशाल्लाह। आगे कुछ डोंट्स हैं। आप रुकू नंबर 4, 31 से 40, अभी तक आपने नोट किए कि नहीं? एक चीज़, 10-10 आयतों का रुकू है इस सूरत का। चलिए, वला तक्तुलु औलादकुम खशयत इमलाक, कबीरा गुनाहों की बात है इसमें, और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को न मार डालो, इनको और तुमको हम ही रोज़ी देते हैं, यकीनन इनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है, खबरदार जिना के करीब भी ना पटकना, क्योंकि वो बड़ी बेहयाई है और बहुत बुरी राह है, और किसी जान को जिसका मारना अल्लाह ने हराम कर दिया, हरगिज ना हक कत्ल ना करना, और जो शख्स मजलूम होने की सूरत में मार डाला जाए, हमने इसके वारिस को ताकत दे रखी है, बस इसे चाहे कि मार डालने में ज्यादती ना करे, बेशक वो मदद किया गया है, और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ सिवाय इस तरीके के जो बहुत ही बेहतर हो, यहाँ तक कि वह अपनी बलूगत को पहुँच जाए, और वादे पूरे करो, क्योंकि कौलो इकरार की बाज पुरस होने वाली है, और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो, और सीधी तराजू से तोला करो, यही बेहतर है, और इंजाम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। जिस बात की तुम्हें खबर ही ना हो इसके पीछे मत पड़ो। चंद सेकंड रुकूं ज़रा, हम देसी लोगों को इसकी बड़ी फिक्र है और इस पे अमल करने की ज़रूरत है। कुरे तजस्सुस, कौन क्या कैसे ये वो, ला तक्फु मा लैसा लक, इस पे सिर्फ वो एक जोक के स्टाइल में बात समझ बड़ी अच्छी आती है। किसी ने मिर्ज़ा गालिब से कहा कि मिर्ज़ा गालिब, आपको पता है कि आपके हमसाये में खीर पकी है? तो कहने लगे, फिर मुझे क्या? कहने लगे कि मुझे पता चला है वो आपको भी भेजेंगे। तो कहने लगे, फिर तुझे क्या? ये अल्लाह तक फुमा लई सलक। कुरेद ना लीजिए, मिन हुस्न इस्लाम तर्कुहुमा लयानी, आदमी के इस्लाम का हुसन के हर उस चीज़ को छोड़ दीजिए जिसमें आपका क्या जाता है। तो कभी कुरेत ना करें, जो हो रहा है बस आंखें बंद करें, किसी के घर में जाएं तो अंधे बन के जाएं, और बाहर निकलें तो गूंगे बन के निकलें, ताकि आप लोगों को मुसलमान बन के दिखें, जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहते हैं। और आज हमारा हाल है सियासतदानों से लेकर मजहबी रहनुमाओं की ऑडियोज़ को लीक करना और उनके मीम्स बनाना और अल्लाह जाने क्या कुछ। यानी पहले तो गीबतें 2 के 3 के बीच में होती थी ना, अब सोशल मीडिया पे होती है। मैं सोचती हूँ क़यामत के दिन कितना दायरा कार बढ़ चुका होगा उस बंदे का जिसने वो पहली मीम बना दी, वो पहली को गंदी फोहश बात कह दी किसी के नाम पे, और लोग बेसोचे समझे उसको आगे करते हैं, नीचे लिखा होता है कितनों ने इसको आगे फॉरवर्ड किया। खुदा के लिए अपना काम ना करें, ऐसी चीज़ों में फेंक दें अपने आप को, फाड़ के फेंक दे अपने वो सारे सोशल मीडिया के चैनल्स और चीज़ें जहाँ लोगों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कि उनकी इज्जतों की और जान और माल की। अल्लाह काफ़ी हिसाब लेने के लिए आप और मैं के चौकीदार बनते हैं। अल्लाह ताला हमारी अखलाकी इसलाह कर दे। सारे इवनिंग स्पेशल बंद हो जाएंगे अगर हम इस काम पर आ गए तो। बहरहाल फिर सुनिए, जिस बात की तुम्हें खबर ही ना हो इसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि कान और आँख और दिल, इन तीनों पर भी गौर कीजिए, कान सुनते हो गलत चीज़ें, आंख से देखते हो, और दिल में फिर उनके बारे में गलत सलत बातें लाते हो, इन सब से बाज पुर्स की जाने वाली है। पूछ गिछ होगी, कटहरे में खड़ा करके एक एक चीज़ पूछी जाएगी, और क्या, और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो कि तुम ज़मीन को ना फाड़ सकते हो और ना लंबाई में पहाड़ों को पहुंच सकते हो। इन सब कामों की बुराई तेरे रब के नज़दीक सख्त नापसंदीदा है। तसव्वुर में लाइए हमारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए, कैसा प्यारा होगा, जन्नत नहीं होगी या वाकई पैराडाइज ना बन जाएगा अगर मुसलमान ऐसे हो जाएं। देखिए, ज़मीनों का हुसन नहीं होता, लोग कहते हैं फ़लाँ मुल्क कितना प्यारा, फ़लाँ का सब्ज़ा अच्छा सब्ज़ी, लोग देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ इज़ ह्यूमन बीइंग। हमारा मुल्क भी बहुत प्यारा है अगर लोगों का ये अखलाक और किरदार बन जाए। फरमाया, ये उन सारी वही की चीज़ों के साथ जो तेरी तरफ तेरे रब ने हिकमत से उतारी है, कि तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाना, कि मलामत खुर्दा और आंधे दरगाह होकर दोजख में डाल दिया जाए, यानी यहाँ पे वो बात पूरी हुई जो पीछे से शुरू हुई, तौहीद पे बात शुरू हुई थी, तौहीद पे ख़त्म हो रही है। क्या बेटों के लिए तुम्हारे रब ने तुम्हें छांट लिया और ख़ुद अपने लिए फरिश्तों को लड़कियाँ बना ली? बेशक तुम तो बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो। तो लिखिए, माशरती इसलाह के सुनहरे असूल हमने इस रुकू में पढ़े, आयत 31 से 40 सामने है। दोबारा देख लीजिए, औलाद का कत्ल नहीं करना, जिना और बेहयाई से बचना है, यतीमों का माल नहीं खाना, नाप तोल पूरा देना है, ऐब जोई और बुख्तान बाजी से पास रहना है, और ज़मीन पे अकड़ कर मत चलना, और अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। ये 7 चीज़ें कमो बेश अहादीस में भी अल-कबायर के नाम पे आती है। आपने मैंने क्या सीखा? अहद को पूरा करना है, बुरी नीयत से यतीम के माल के करीब नहीं जाना, नाप तोल को पूरा करना है, ऐसी चीज़ के पीछे नहीं लगना जिसका इल्म नहीं हो, और नाहक कत्ल नहीं करना, ज़मीन में अकड़ कर नहीं चलना। अगर ऐसा हो जाए, पूरे साल के बाद पाकिस्तान में एक मुकदमा भी दर्ज ना हो, न चोरियाँ, न चकारियाँ, न कत्ल, न जिना, न बदकारी, तो क्या ये मुल्क जन्नत नहीं बन जाएगा? बाहर के लोग आएंगे इस मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ आपका अपना ब्रेन सारा ड्रेन हो रहा है कि नहीं जी, यहाँ जान को खतरा, माल को खतरा, रहते इधर है और माल सारा बाहर के बैंकों में जमा कराते हैं, क्या पता किसी वक्त मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। भाई क्या हो गया तुम्हें? दरवाजे खोल कर घर में आता है कोई? अपने चोर होता है तो दरवाज़ा पीछे का खोल के आता है कि अगर कोई आ गया तो भागूंगा कैसा, कि अपने मुल्क को छोड़ के भागना। इसलिए लिया था, इसलिए नेमते मांगी से अल्लाह से, इसको ठीक कीजिए। ये जब ठीक हो गया ना, नया हो जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और ये ठीक कब होगा? जब इंसान ठीक होगा। एक बच्चा अपने बाप के साथ बैठा हुआ था और बार बार बाप को तंग कर रहा था, जैसे इंटरप्ट कर रहा था, अबू मैं बोर हो रहा हूँ, अबू बोर हो रहा हूँ। अब्बा उसको कोई काम कहते वो करके 2 मिनट में आ जाता। उसने कहा मैं इसको कैसे बिजी करूँ? आइडिया आ गया, अखबार में दुनिया का नक्शा बना हुआ था, उसने उस नक्शे को, उस अखबार को चंद टुकड़ों में ऐसे टुकड़ टुकड़ करके ना बच्चे से कहा जाओ इसको जोड़ के लाओ। उसका ख्याल था कि 2-3 घंटे लगेंगे तो मैं भी ज़रा अपना काम कर लूँगा, पर बच्चा देखिए, वो बच्चा भी क्या जीनियस बच्चा था, चंद मिनट नहीं गुजरे तो वो पूरा अखबार जोड़ के ले आया, अब्बा बन गया नक्शा। कहने कमाल है, ये कैसे तुमने अमेरिका, कनाडा, चाइना और इन सबको जोड़ कैसे दिया? कहने लगा अब्बा बहुत आसान है। क्या? कह रहे जब आप अखबार फाड़ रहे थे तो मैं देख रहा था पिछली साइड पे एक आदमी की तस्वीर थी, तो मैंने आदमी की तस्वीर जोड़ दी, दुनिया ठीक हो गई। ये करना है आपने? मैंने इंसान को ठीक कीजिए, ज़मीन पूरी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।